अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायानं, नमो लोए सौवसाहूणं, प्रणम्य वीरं परमावबोधम्, आशादरो मुग्ध विबोधनाय, सोपज्ञ धर्मामृत धर्म शास्त्र पदानि किंचित् प्रगटीकरोति। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 15 पर आ गए। वहाँ एक छपा है क्या ऊपर? जब मैं सोचती थी एक नंबर कैसा, 15 नंबर। 6 तक की हमारी गाथा और उसका विशेषार्थ हुआ था। अब नीचे से हम 5वीं लाइन पढ़ेंगे। आगे दुर्जनों के द्वारा अपवाद किए जाने की शंका को दूर करते हैं। अब उसके लिए पहले श्लोक पढ़ेंगे। परानुग्रह बुद्धि नाम महिमा कोप्य हो महान, ये न दुर्जन वाग्वज्र पतन्ने बविहन्यते। जिनकी मति दूसरों के कल्याण में तत्पर रहती है, उनकी कोई अनिर्वचनीय महान महिमा है। अनिर्वचनीय ने वचनों में नहीं कहा जा सकता, जिससे दुर्जनों का वचन रूपी वज्र गिरते ही नष्ट हो जाता है। यानी दूसरों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। और यहाँ तो शास्त्र की बात है, तो शास्त्र के द्वारा पर का कल्याण होता है, तो दुर्जनों के वचन जो है वो कुछ उसके पर असर नहीं करेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। आगे ग्रंथकार समासोक्ति अलंकार के द्वारा कलिकाल में सम्यक धर्म के उपदेशकों की दुर्लभता बताते। अब उपदेशक दुर्लभ है तो वो सुनकर वो तो आचरण करने वाले वो कितने दुर्लभ होंगे। समासोक्ति ने यहाँ उपमा देकर समझा रहे हैं। देखो देखो, उसका विशेषार्थ में उन्होंने वो अलंकार का लक्षण बताया। अलंकार समझते हैं ना, गुजराती में अलंकार ही कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमा अलंकार, जैसे उपमा देना वो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार। ऐसे ये समासोक्ति अलंकार है, उसका लक्षण उन्होंने विशेषार्थ में दिया है। समासोक्ति उक्ति है ना कथन वचन, उसका अर्थ आगे देखेंगे हम विशेषार्थ में। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक का अर्थ देखेंगे, फिर विशेषार्थ में वो समासोक्ति अलंकार क्या है वो आगे बता रहे हैं, उसको देखेंगे वहां से। पहले ऊपर 8 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम। सुप्रापास्तनयित्न शरदिते साटोपमुत्थाये प्रत्याशं प्रसुताश्चल प्रकृतयो गर्जन्त्यमन्दं सुमुधा। ये प्रागब्धचित्तान् फलर्दिमुदकै विहिन्नयन्तो नवान् सत्क्षेत्राणि पृणन्त्यल्त्यालं जनयनितुं ते दुर्लभास्तद्धना। सत्क्षेत्राणि प्रणन्त्यालं जनयितुं ते दुर्लभास्तद्गुणाः। अभी इसका अर्थ देखते हैं। शरद ऋतु में ऐसे मेघ सुलभ है, ये शरद ऋतु कब आता है? यानी वर्षा काल अभी समाप्त हुआ है, अभी शरद काल चालू हो गया, यानी अभी मेघ आएंगे परंतु वो तो बरसेंगे नहीं। तो शरद ऋतु में ऐसे मेघ सुलभ है जो बड़े आडंबर के साथ उठकर और प्रत्येक दिशा में फैलकर वृथा ही बड़े जोर से गरजते हैं और देखते देखते विलीन हो जाते हैं। किंतु जो वर्षा काल के मेघों से पुष्ट हुए धान्य को, अभी अभी हमारा जो सीजन चल रहा है, अभी वर्षा ऋतु समाप्त हुआ है, तो वर्षा काल में मेघ तो बरसे थे, तो उनके द्वारा धान्य पुष्ट हुआ था, उस धान्य को फल संपन्न करते तथा नवीन धान्यों को उत्पन्न करने के लिए खेतों को जल से भर देते हैं, ऐसे मेघ दुर्लभ है। यानी शरद ऋतु में बरसने वाले जो वर्षा देने वाले मेघ दुर्लभ है, ऐसे ही इस कलिकाल में सच्चे सत धर्म का उपदेशक दुर्लभ है। ये उसके साथ उन्होंने उपमा दी, समासोक्ति, इसको समासोक्ति अलंकार कहा उन्होंने। देखो विशेष अर्थ में इसको हम पढ़ेंगे। रुद्र भट्ट ने समासोक्ति अलंकार का लक्षण इस प्रकार कहा है, जहाँ समस्त समान विशेषणों के साथ एक उपमान का ही इस प्रकार कथन किया जाए। एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान और जिसके लिए वो उपमा दी जाती है वो उपमेय। यहाँ उपमेय क्या है? तो सद्धर्म का उपदेश देने वाले वो उपमेय, और उपमा किसकी दी है? वो शरदकालीन मेघ की। तो कहते समान विशेषणों के साथ, अनेक विशेषण उसके साथ उनकी कंपैरिजन की है, एक उपमान का ही इस प्रकार कथन किए जाए। यानी यहाँ उपमेय की बात ही नहीं की है, उपमान का ही सारे अनेक विशेषण लगा के यहाँ कहा सद्धर्म की बात नहीं की, वो केवल मेघों की है, वो उसी की बात दुर्लभ है दुर्लभ है ऐसा बताया था, उसी के द्वारा इसको सिद्ध कर रहे। तो देखिए, जहाँ समस्त समान विशेषणों के साथ एक उपमान का ही इस प्रकार कथन किया जाए कि उससे उपमेय का बोध हो जाए। यानी यहाँ उपमेय की कुछ चर्चा नहीं की, केवल दृष्टांत पर ही सारे विशेषण गठित किए और उसी से हमें इसका बोध हो जाता है, उसको कहते हैं समासोक्ति अलंकार। पृष्ठ 16 पर हम पढ़ रहे हैं, विशेषार्थ की तीसरी लाइन अभी होने को आई। प्रकृत कथन, प्रकृत यानी वर्तमान का जो चालू विषय, उसी समासोक्ति अलंकार का निदर्शन है, यानी उसी का ही एग्जाम्पल है। श्लोक के पूर्वार्ध में, अभी ये 8 नंबर के श्लोक में 4 लाइन है, तो शुरुआत में पूर्वार्ध यानी उसके पहली 2 लाइन, मेघ उपमान है और मिथ्या उपदेशक उपमेय है। ये शरद ऋतु के मेघ क्या है कि बहुत सारे दिखते हैं, गरजते भी है, परंतु अभी वो वर्षा नहीं है, उसमें से पानी नहीं मिलता। अभी यहाँ मिथ्या उपदेशक, बहुत सारे मिथ्या उपदेशक है, कितने अभी घरों में वो केबल पर और टीवी पर भी आया, घर में बैठ गए, हमको पता नहीं, आपको पता है, हमारे पास है नहीं केबल। तो कहते वो मिथ्या उपदेशक बहुत हो गए। उपमान यानी जिसकी उपमा देती है, जो दृष्टांत है उसको कहेंगे उपमान, और जिसके लिए वो दृष्टांत दिया जाता है वो है उपमेय। जैसे हम कहते ना मृग नयनी, मृग के नयन के समान, या चंद्रमुखी जिसका मुख चंद्र के समान है, तो चंद्र क्या हुआ? उपमेय, उपमान हुआ, और वो स्त्री का मुख हुआ उपमेय, है ना। तो यहाँ सच्चे जो उपदेशक है वो उपमेय है, और वो वर्षा काल के मेघ है वो उपमान है। पहली दो लाइन में ये जो मिथ्या उपदेशक है वो उपमेय है, और शरद ऋतु के जो मेघ है जो बहुत जोर से आते हैं, दिखते हैं और बिखर जाते हैं और पानी तो नहीं बरसते, तो वो है उपमान। तो श्लोक के पूर्वार्ध में मेघ उपमान है और मिथ्या उपदेशक उपमेय है। मेघ के साथ समस्त विशेषणों की समानता होने से, क्या क्या वो समानता थी अभी हम फिर ऊपर की श्लोक का अर्थ देखते हैं। अर्थ शरद ऋतु में, शरद ऋतु ने अभी जो चल रहा है बरसात का सीजन, यानी वर्षा ऋतु समाप्त हुआ है, अभी जो चल रहा है वो शरद ऋतु है। ऐसे मेघ सुलभ है जो बड़े आडंबर के साथ उठकर और प्रत्येक दिशा में फैलकर वृथा ही बड़े जोर से गरजते हैं। अब ये उसका ये सारा ही वर्णन यहाँ भी लागू होता है मिथ्या उपदेशक पर। तो कहते समस्त विशेषणों की समानता होने से समासोक्ति अलंकार के बल से मिथ्या उपदेशकों की प्रतीति होती है। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, पर वो सभी उन पर लागू होता है। शरद ऋतु में वर्षा काल का अंत आता है, उस समय बनावटी मेघ बड़े घटाटोप से उठते हैं, खूब गरजते हैं, किंतु बरसे बिना ही जल्द विलीन हो जाते हैं। इसी तरह इस पंचम काल में मिथ्या उपदेश दाता भी अभ्युदय और निश्रेयस मार्ग का उपदेश दिए बिना ही विलीन हो जाते हैं। श्रेयस को या निश्रेयस को एक ही बात, यानी मोक्ष का मार्ग का उपदेश दिए बिना ही, नहीं कल्याणकारी उपदेश दिए बिना ही विलीन हो जाते। और यद्यपि उनका आडंबर बड़ी धूमधाम का रहता है, हम देखते हैं उनके भी वो बड़ी बड़ी सभाएं चलती हैं, बहुत उनके फॉलोअर्स है, नाम होता है और क्या क्या होता है, तो बड़ी धूमधाम से चलते हैं। इसी तरह श्लोक के उत्तरार्ध में, अभी जो पूर्वार्ध में मिथ्या उपदेशक और शरदकालीन मेघ लिया, अब उत्तरार्ध में नेक्स्ट टू लाइन, जो मेघ उपमान रूप है उनसे समस्त विशेषणों की समानता होने से समासोक्ति अलंकार के बल से सम्यक उपदेशकों की उपमेय रूप से प्रतीति होती है। उनका नाम नहीं लिया, तो वो सारा ही उन पर लागू होता है और इसे पता चल जाता है। जैसे शरद काल में ऐसे मेघ दुर्लभ है, अभी हम देखते हैं अभी वर्तमान में अभी जो चालू है तो अभी बरसने वाले मेघ बहुत दुर्लभ है, कदाच हो जावे वर्षा। तो कहते ऐसे मेघ दुर्लभ है जो, अभी एक एक विशेषण शांति से सुनना बराबर, वर्षा काल के मेघों से पुष्ट हुए पहले के धान्यों को, यानी अभी वर्षा काल बीत गया है, वहाँ जो वर्षा काल के मेघों ने पानी बरसा था और उसके कारण वो जो फसल आई थी, धान आया था, तो वो पुष्ट हुए पहले के धान्यों को, वो धान्य तो पुष्ट हुआ था फल संपन्न करने के लिए, यानी अभी अगर पानी बरसा तो उसमें और फल संपन्न हो जाते हैं, और क्या होता है नवीन धान्यों को उत्पन्न करने के लिए, खेतों को जल से भर देते हैं, यानी अभी भी ऐसे कोई दुर्लभता से कुछ मेघ ऐसे आते हैं कि जिससे पानी मिलता है खेतों में। वैसे ही अभी वो उपमेय पर घटित कर, पंचम काल में ऐसे सच्चे उपदेष्टा दुर्लभ है, उपदेष्टा यानी उपदेश देने वाला, जो अभी वहां वर्षा काल के मेघों ने वो धान्य को फसल उगाई थी, तो पूर्वाचार्यों के उपदेश से व्युत्पन्न हुए पुरुषों को सम्यक उपदेश के द्वारा सदाचार से संपन्न करते हैं, यानी जो ऑलरेडी जिन्होंने पूर्वाचार्यों का उपदेश सुना है, पढ़ा है कहो, और तो उनको और दृढ़ कराते हैं। तो सदाचार से संपन्न करते हैं, यानी उसके और ऊपर उठाते हैं, ऊपर की भूमिका में, और नए विनीत धर्म प्रेमियों को उत्पन्न करते हैं, यानी नए जो धर्म, उनका उपदेश सुनकर जो कुछ नए लोग इसमें जुट जाते हैं। यहाँ वर्षा काल के मेघ उपमान है, पूर्वाचार्य उपमेय है, क्योंकि जैसे वर्षा काल के मेघों ने पानी दिया था और उससे फसल उगी थी, तो उसके स्थान पर पूर्वाचार्य को लेना। फल संपत्ति उपमान है, वो कहा ना फल संपन्न करते हैं, और सदाचार, ये सदाचार की प्रकर्षता उपमेय है, यानी ऑलरेडी पूर्व में इसको सुना है पूर्वाचार्यों का उपदेश, परंतु वहाँ धान्य में फल संपन्नता होती है और यहाँ सदाचार में और प्रकर्षता होती है, और ऊपर के व्रतादि ग्रहण करते हैं। जल उपमान है और सम्यक उपदेश उपमेय है, वो जो जल उन्होंने जल बरसा था ना, या अभी जो बरसे है, तो यहाँ तो सम्यक उपदेश की बात है। नवीन गेहूं की बाले उपमान है और नई व्युत्पत्तियां या शास्त्रों के अर्थ का रहस्य उपमेय है। अच्छे खेत उपमान है और विनीत शिष्य उपमेय है, विनीत यानी विनम्र। शरद काल के मेघ उपमान है और इस युग के गणी उपमेय है। जल है जो जल बरसाते हैं, मेघ जल बरसाते हैं, वो वर्षा काल के मेघों ने जल बरसाया था। अभी भी ऐसे कुछ मेघ दिखने में आते हैं कि जो जल बरसाते हैं, ऐसे अभी भी सम्यक उपदेश देने वाले कोई मिलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। गणी यानी मुनि, इस युग के गणी, शरण मेघाहम योगिन गणिन। शरद काल के मेघ लिया है, ऐसे मेघ दुर्लभ है, यानी ऐसे युग के गणी दुर्लभ है, यानी शरद काल में भी बरसने वाले जो मेघ दुर्लभ है, वैसे यहाँ पर समझ, ये सच्चे उपदेश देने वाले गणी दुर्लभ। पहले कहा है कि मंगल आदि का कथन करके आचार्यों को शास्त्र का व्याख्यान करना चाहिए, अतः आगे ग्रंथकार आचार्य का लक्षण बतलाने के उद्देश्य से व्यवहार प्रधान उपदेश के कर्ता का कथन करते हैं। अभी हम पहले ऊपर पढ़ेंगे 9 नंबर। प्रोद्यन निर्वेद्य पुष्यत् व्रत चरण रस सम्यगाम नाय धरता धीरो लोक स्थितिज्ञः स्वपरमत विदाम वाग्मिनाम चोपजीव्य सन्मूर्ति स्तीर्थ तत्व प्रणयन निपुनः प्राणदाद्योभिगम्यो निर्ग्रंथाचार्य वर्यः परहित निरतः सत्पथं शास्तु भव्याः। अतिशय रूप से बढ़ते हुए वैराग्य से जिनका व्रताचरण में रस पुष्ट हो जाता है, जो सम्यक आमनाय के, आमनाय ने गुरु परंपरा और कुल परंपरा के धारक है, धीर है, परिषह उपसर्ग आदि से विचलित नहीं होते, लोक की स्थिति को जानते हैं, स्वमत और परमत के ज्ञाताओं में तथा वक्ताओं में अग्रणी है, प्रशस्त मूर्ति है, तीर्थ और तत्व दोनों के कथन में निपुण है, जिनका शासन प्राणवान है, उसका कोई उल्लंघन नहीं करता, जिनके पास प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, तथा जो सदा परोपकार में लीन रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ निर्ग्रंथाचार्य भव्य जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देवे। इन्हें आचार्यों की बात यहाँ उन्होंने बता दी। क्या क्या देखा हमने? व्रताचरण में रस पुष्ट हो जाता है, अतिशय रूप से बढ़ते हुए वैराग्य से, यानी उनके तो वे वैराग्य है ही है, वो भी बढ़ता चलता है, और व्रताचरण में रस पुष्ट हो जाता है। देखो विशेषार्थ में देखते हैं, व्रताचरण किसको कहा? गुप्ति और समिति के साथ व्रतों के पालन करने को व्रताचरण कहते हैं, व्रतों का आचरण। एक गुप्ति क्या होती है और समिति क्या होती है रोमा वालों में क्या? हाँ तीन गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। और समिति कितनी है? समिति नहीं, आपको याद है पांच समिति है, नाम याद है?
समिति आदान प्रदान,
बोलो एरिया समिति, एक एक बोलो, एरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठा। ये समिति यानी हाँ, जो जो समता तो है ही है, उनके जो बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा उसका वर्णन होता है। समिति हाँ, एक्चुअली वो तो अंतरंग में स्थिरता ही बताता है निश्चय से, परंतु व्यवहार से उसका वर्णन जो है, जो बाह्य प्रवृत्ति होती है वो सावधानी पूर्वक अहिंसा व्रत के पालनार्थ होती है मुख्यतः। जैसे पहली कौन सी बताई आपने? एरिया समिति। तो कैसे चलते हैं? तो कहते सूर्योदय के बाद और प्रासुक मार्ग पर चार हाथ जमीन देखते हुए मौन से चलते हैं, इधर उधर बातें करते नहीं चलेंगे। इस तरह से हर एक हमने विस्तार से देखे समितियों का स्वरूप। प्रतिष्ठापन, प्रति कोई चीज यानी रखनी है नीचे, कमंडल रखना है या कुछ पीछे, तो पहले वहां वो पीछे से उसको शोधन करेंगे फिर रखेंगे। शास्त्र के पन्ने उल्टाने वो तो आदान निक्षेपण में दिया जाता है, प्रतिष्ठा में मलमूत्र विसर्जन, यानी वो वहां कोई जीव जंतु नहीं है उसको देख कर फिर वहां मलमूत्र का विसर्जन, वो प्रतिष्ठापन है। और आदान निक्षेपण में तो वो उठाने और रखते समय कोई चीज जैसे शास्त्र है, क्योंकि उनके पास क्या है रखने और उठाने? शास्त्र है, कमंडल है पीछे, और पीछे से उसको बराबर जब बैठते समय वगैरह वो तो जीव जंतु रहित है इसको देखते हैं। जैसे पन्ना भी पलटना है तो पहले पीछे से ऐसा करेंगे फिर पन्ना पलटेंगे।
भाषा है तो वो बिल्कुल प्रियवचन,
हाँ भाषा समिति में एकदम इतम प्रियवचन। एशना में भोजन संबंधी है, एक बार वो कैसे है तो निर्दोष आहार लेते हैं, अंतराय से रहित और गर्भपात्र लेते हैं, इन्हें नवधा भक्ति पूर्वक जो दिया जाता है इस तरह से वो सब उसमें आ जाते हैं एशना से। तो वो व्रताचरण हुआ, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति को वैराग्य या निर्वेद कहते हैं। वैराग्य नहीं वो विरक्ति। उसी का दूसरा नाम है निर्वेद। संवेग एक होता है और निर्वेद एक होता है। शांत रस की प्राप्ति के अभिमुख, अभिमुख यानी सन्मुख होने से उत्पन्न हुए आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान की भावना के अवलंबन से। क्या कहा? ये शांत रस की प्राप्ति कहाँ से होगी? जहाँ भरा पड़ा है वहां से होती है, कहीं बाहर से तो होने वाली नहीं है। उसके अभिमुख यानी अतीन्द्रिय आनंद के सन्मुख वाले उत्पन्न हुए आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान की भावना के अवलंबन से, यानी वो भेद ज्ञान की भावना ने भेद ज्ञान जो करते हैं उसके अवलंबन से, जिनका व्रताचरण का रस प्रति समय वृद्धि की ओर होता है। यह व्रताचरण अभी थे कि ना, वो व्रतों के पालन करने को व्रताचरण कहते हैं, समिति गुप्ति वगैरह। निश्चय से तो अंतरंग में स्थिरता ही है और फिर बाह्य में भी वैसी बातें होती है, तो कहते वो क्यों होता है वृद्धि, तो कहते भेद ज्ञान करते रहने से उसमें भी वृद्धि होती है। तथा जो सम्यक आमनाय के धारी होते हैं, आमनाय के दो अर्थ होते हैं, हाँ, आमनाय आगम को भी कहते हैं और आमनाय वंश परंपरा और गुरु परंपरा को भी कहते हैं। ये हमारी आमना है नहीं, ये हमारी परंपरा ऐसी है, पद्धति जिसको हम कहेंगे, आगम को भी, हाँ, ट्रेडिशन, हाँ, दोनों उसके अर्थ होते हैं। अतः जो चारों अनुयोगों से विशिष्ट संपूर्ण आगम के ज्ञाता और प्रशस्त गुरु परंपरा तथा कुल परंपरा के धारक है, दूसरे शब्दों में परंपरागत उपदेश, परंपरा से आया हुआ परंपरागत आगत और संतान क्रम से आए हुए तत्वज्ञान और सदाचरण, उसमें तत्पर है। परिसर उपसर्ग में भी अधीर नहीं होते, अधीर यानी धीर छूटता नहीं है, आकुलित नहीं होते, आंदोलित नहीं होते। ऊपर उन्होंने कहा था कि विचलित नहीं होते हैं। चराचर जगत के व्यवहार के ज्ञाता होते हैं। अपने स्यादवाद सिद्धांत को तथा अन्य दर्शनों के एकांतवाद को जानने वालों के पिछलग्गु न होकर अग्रणी होते हैं। अग्रणी है वो पीछे पीछे वाले ने ऐसे ही नहीं, तो कहते बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अपना भी मत और परों का भी, क्योंकि उनको जाने बिना वो खोटा है ये कैसे जानेंगे, तो उस संबंधी भी उनकी जानकारी अच्छी तरह से होती है। हमने देखा था पंडित चोरमल जी ने भी जो पांचवा अधिकार लिखा है विविध मत समीक्षा, उसमें तो उन्होंने अन्य मतियों के क्या क्या तत्व है, कितने होते हैं, वो कितना विस्तार से वर्णन किया, उसके अभ्यास के बिना कैसे कह सकते। ऐसा नहीं कि हम जैनी इसलिए जैनी सच्चे, वो क्यों सच्चे है, तो उनके क्या मत है, हमारे क्या मत है, वो कैसे उसका खंडन हो सकता है, ये बताकर फिर उसका निषेध किया जाता है, किसी द्वेष बुद्धि से नहीं होता। तो कहते उन जानने वालों में ये अग्रणी होते हैं, अग्रेसर होते हैं। इसी तरह वक्तृत्व शक्ति से विशिष्ट पुरुषों में भी अग्रणी होते हैं। वक्तृत्व समझते हैं, बोलने की कला, अच्छे वक्ता होते हैं, वक्तृत्व ये शक्ति हुई, यानी वक्तापना जो है उनमें। जिनकी मूर्ति, जिनकी मूर्तियां ने उनका जो कुछ जो रूप जो कहेंगे हम, यानी दिखने में क्या है, सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए लक्षणों से शोभित। ये सामुद्रिक शास्त्र समझते हैं, जैसे अंगों को देख, कैसे मस्तक है, कैसे वो हाथ है, कैसे आंखें, ये इनको द्वारा, वो तो सामुद्रिक यानी जिसको जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, वैसे अंगों को देखकर उनका फेस रीडिंग वगैरह। तो कहते हैं कि उनमें जो लक्षण कहे गए हैं ऐसे लक्षणों से शोभित है, यानी जो भले लोगों को, सज्जन लोगों के या बड़े पुरुषों के, महान पुरुषों के जो लक्षण बताते हैं ना, ऐसे हुए लक्षण से युक्त है। यह आचार्यों का वर्णन चल रहा है। और ये क्या है, प्रशस्त है, यानी घने रोम, स्थूलता और दीर्घता, इन तीन दोषों से रहित होने के कारण प्रशस्त होती है क्या उनकी मूर्ति। हाँ, बहुत बाल नहीं होते शरीर के ऊपर, ज्यादा स्थूल नहीं है। दीर्घता यानी क्या, लंबा,
आयु, 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 आयु
दोष बताया, दोष बताया, दीर्घता ने ज्यादा लंबे होने नहीं होंगे ऐसा होगा शायद, मुझे पता नहीं दीर्घता, यानी जैसे कहते हैं ना एबनॉर्मल ऐसा कुछ नहीं होंगे, प्रपोर्शनल बॉडी। आगम में कहा है रूप आमनाए और गुणों से संपन्न, यतियों को मान्य, तपसे ज्येष्ठ और गुरुओं में जो ज्येष्ठ होता है उसे गणनायक, संघ का अधिपति गणधर कहते हैं। यहाँ तो गणधर की बात है, परंतु अभी तक तो आचार्यों की बात वो बता रहे थे, ग्रंथकार आचार्य बता रहे हैं उसमें। तथा जो तीर्थ तत्व के प्राणायाम में निपुण होते, ऊपर बताया था प्रशस्त मूर्ति तीर्थ तत्व दोनों के कथन में निपुण है, उसी को यहाँ प्राणायाम में निपुण होते हैं, कथन में, जिसके द्वारा संसार समुद्र को तिरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। किसके द्वारा? तो जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है उसके द्वारा तिरा जाता है, इसलिए उसको कहेंगे तीर्थ। सब अनेकांतात्मक है इस प्रकार का मत ही तीर्थ है, और समस्त मतवादों को, मतवाद यानी अन्य मतियों के जो मिथ्यावाद है, तिरस्कृत करते हुए यानी उसका खंडन करते हुए व्यवहार और निश्चय नय के प्रयोग से प्रकाशित विचित्र आकार वाली चक्रात्मक वस्तु का कथन करना प्रणयन है। नए चक्र, ये कहाँ से लाए? रूपामनाय गुणे राड्यो इतिना मान्य वच तपो ज्येष्ठ गुरु ज्येष्ठ विज्ञो गणनाय। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गया। नहीं नहीं, ये चक्राकार कहाँ से लाया? तो फिर पढ़ेंगे इसको, यानी अन्य मतों का ये खंडन करते हैं और व्यवहार और निश्चय के प्रयोग से वस्तु तत्व का स्वरूप बताते हैं, तो उसके प्रयोग से प्रकाशित विचित्र यानी अनेक प्रकार की, विचित्र यानी मराठी वाले विचित्र नहीं, विचित्र यानी अनेक प्रकार की आकार वाली चक्रात्मक वस्तु का कथन करना प्रणयन है, यानी अनेक नयों के अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप बताते हैं। तथा अध्यात्म रहस्य को तत्व कहते हैं, भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय के द्वारा व्यवस्थापित दया, इंद्रिय दमन, त्याग और समाधि में प्रवर्तन से होने वाले परमानंद पद का उपदेश उसका प्रणयन है। ये जो बता ना तीर्थ और तत्व दोनों का कथन में निपुण है, उसका प्रणयन करते हैं। प्रणयन करते हैं ना, क्या तीर्थ का भी और तत्व का, उसका अर्थ क्या है? भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय, इसके ना निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है, फिर भी दोनों का कथन करके, तो दया इंद्रिय दमन त्याग ये सब का व्यवहार और निश्चय के द्वारा कथन होगा, तो उसके प्रवर्तन से होने वाले परमानंद पद का उपदेश उसका प्रणयन है। अर्थात उसी का अर्थ बता रहे, तीर्थ और तत्व दोनों के प्रणयन में, प्रणय का अर्थ क्या है? मुख्य और उपचार के कथन में निपुण होना चाहिए। तीर्थ ने जिससे संसार समुद्र को तिरा जाता है वो तीर्थ है, और अध्यात्म का रहस्य वो तत्व है, और इनका कथन कैसे होना चाहिए? मुख्य से और व्यवहार से, उपचार से। यदि वह किसी एक में ही निपुण हुए तो दूसरे का लोप हो जाएगा। ये बस निश्चय ही निश्चय है, व्यवहार का कथन ही करें नहीं करेंगे दूसरे का लोप हो जाएगा। और बस व्यवहार का ही करेंगे तो निश्चय का लोप हो जाएगा। अर्थात केवल निश्चय में निपुण होने से व्यवहार का लोप हो जाएगा और केवल व्यवहार में निपुण होने से निश्चय का लोप होगा। कहा भी है, यदि जिनमत का प्रवर्तन चाहते हो तो, जिनमत का प्रवर्तन करना है नहीं तो बताना, उसको फॉलो करना, वो आगे बढ़ाना, तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो, दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। व्यवहार के बिना तीर्थ का उच्छेद होता है, क्योंकि उपदेश तो व्यवहार है सारा, जितना भी उपदेश है कथन है वो तो व्यवहार है। और निश्चय के बिना तत्व का उच्छेद होता है, उसके बिना अध्यात्म यानी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, उसको समझे बिना। निश्चय ने जो मुख्य कथन है, उच्छेद ने नाश, उच्छेद होना यानी नाश होना। जिनकी प्रवृत्ति स्व समय रूप परमार्थ से रहित है, स्व समय रूप परमार्थ, स्व समय ने शुद्धात्मा, उस रूप परमार्थ से रहित है यानी शुद्धात्मा का अवलंबन नहीं है, और जो कर्मकांड में लगे रहते हैं, क्या यानी बाह्य प्रवृत्ति केवल क्रिया में ही लगे रहते हैं और न आत्मा की बात समझते हैं, न जानते हैं, न कुछ उनको पता है, वे निश्चय शुद्ध रूप चारित्र के रहस्य को नहीं जानते। यानी उनको वो चारित्र यानी वो बाह्य को ही चारित्र समझते, उसी में लगे रहते हैं, या स्वयं या दूसरे ही लगे रहते उन्हीं को मानेंगे। तथा जो निश्चय का आलंबन लेते हैं किंतु निश्चय से निश्चय को नहीं जानते, खरे को निश्चय को जानने वाले बाह्य का कुछ ये स्वच्छंद नहीं होगी। निश्चय का आलंबन लेते हैं किंतु निश्चय से निश्चय को नहीं जानते, बहुत अच्छा लगा। वे बाह्य क्रियाकांड में आलसी चारित्राचार को नष्ट कर देते हैं, निश्चयवश। अतः आचार्य को निश्चय और व्यवहार के निरूपण में दक्ष होना आवश्यक है, ये दोनों का ही निरूपण आवश्यक है, तथा प्रिय वचन और हितकारी वचन बोलना चाहिए। यानी हितकारी वचन का अर्थ ऐसा नहीं कि वो तो बस उसकी बड़ाई करे, किसी को चापलूसी करे, ये बात नहीं है। प्रिय वचन यानी बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, सच्चा उपदेश ही देंगे, परंतु अतिशय प्रिय शब्दों में बोलेंगे और हितकारी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। यदि कोई श्रोता प्रश्न करे तो उत्तेजित होकर सौमनस्य नहीं छोड़ना चाहिए, साम्य भाव, समता भाव, ऐसा व्यक्ति निर्ग्रंथाचार्यों में भी श्रेष्ठ होना चाहिए। जो संसार को दीर्घ करते हैं ऐसे मिथ्यात्व आदि को ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ग्रंथ किसको कहना, ग्रंथी जिसको कहेंगे हम, कि संसार को दीर्घ इन्हें लंबाने वाले, इन्हें संसार में ही जो घुमाएंगे ऐसे जो मिथ्यात्व है उसको हम ग्रंथ कहेंगे। हाँ, ग्रंथ यानी वो शास्त्र नहीं। हाँ, उनको जिन्होंने छोड़ दिया है मिथ्यात्व आदि है ना, मिथ्यात्व कषाय, उनको जिन्होंने छोड़ दिया है उन साधुओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। वो मिथ्यात्व और रागादि से रहित है, तीन कषाय चुपड़ी का तो उनके अभाव है। तथा जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन पांच आचारों को स्वयं पालते हैं और दूसरों से यानी शिष्यों से उनका पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। हमने वो स्वरूप रत्नगण शाकाचार में बहुत विस्तार से देखा था, आप लोगों ने याद करके सुनाया भी था। कहा भी है जो पांच प्रकार के आचार को स्वयं पालते हैं और शिष्यों से पालन कराते हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता उन धीर महापुरुषों को आचार्य कहते हैं। ऊपर लिखा है मेरे ख्याल से इसका श्लोक, पंचदाचरन्त्याचारं शिष्यानाचरयन्ति सर्वशास्त्रविदो धीरास्तेत्राचार्या प्रकीर्तिता। निर्ग्रंथों के आचार्य निर्ग्रंथाचार्य होते हैं। निर्ग्रंथ तो साधुओं को कहते हैं और उनमें जो आचार्य है वो स्वयं भी वो पालते हैं और दूसरों से भी वो करवा लेते हैं, और उनमें भी जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें निर्ग्रंथाचार्य वर्य कहते हैं। एक है निर्ग्रंथ यानी सारे साधु निर्ग्रंथ, उनमें जो आचार्य है उनके आचार्य वो निर्ग्रंथाचार्य, और उनमें जो ज्येष्ठ है वो निर्ग्रंथाचार्य वर्य। उक्त विशेषताओं से युक्त ऐसे आचार्य ही जो कि सदा परोपकार में लगे रहते हैं, सन्मार्ग का यानी व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश देने में समर्थ होते हैं। अतः ग्रंथकार आशा करते हैं कि उपदेशकाचार्य उक्त गुणों से विशिष्ट होवे। उक्त गुणों से विशिष्ट आचार्य को ही आदर पूर्वक उपदेश में लगना चाहिए। आगे अध्यात्म रहस्य के ज्ञाता गुरु की सेवा में मुमुक्षुओं को लगने की प्रेरणा करते हैं। सेवा में लगना इन्हें क्या है, केवल वैयावृत्ति करने से उनको मिल जाएगा? सेवा मुख्यतः उनका उद्देश्य को बाकी वो बाकी से अनुसरता है। यहाँ वो 10 नंबर की बात पढ़ेंगे, हम श्लोक पढ़ेंगे ऊपर। विधिवत धर्म सर्वस्वम यो बुद्ध्वा शक्ति तश्चरण प्रवक्ति कृपया अन्येषां श्रेय श्रेयोर्थिनां हिस। जो विधि पूर्वक व्यवहार और निश्चय रत्न त्रयात्मक संपूर्ण धर्म को परमागम से और गुरु परंपरा से जानकर या रत्नत्रय से समाविष्ट आत्मा को स्वसंवेदन से जानकर शक्ति के अनुसार उसका पालन करते हुए लाभ पूजा ख्याति की अपेक्षा न करके कृपा भाव से दूसरों को उसका उपदेश करते हैं, अपने परम कल्याण के इच्छुक जनों को उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं से धर्म श्रवण करना चाहिए। क्या क्या बातें देखो फिर दोबारा पढ़ेंगे। जो विधि पूर्वक व्यवहार और निश्चय रत्न त्रयात्मक संपूर्ण धर्म को, यानी उसके व्यवहार कथन निश्चय कथन उसका सही अर्थ वो संपूर्ण कथन वो धर्म को परमागम से जानकर और गुरु परंपरा से जानकर, केवल जानकर दूसरों को बताने वाले नहीं है, रत्नत्रय से समाविष्ट आत्मा को स्वसंवेदन से जानकर, आत्मा की अनुभूति होना ही रत्नत्रय प्रकट होना। जो रत्नत्रय से युक्त ऐसे आत्मा को जानकर शक्ति के अनुसार उसका पालन करते हैं, और क्या है, कोई भी लाभ पूजा ख्याति किसी की अपेक्षा के बिना, केवल वो उनके सहज ऐसा भाव होता है कि इसको सबको बता, तो कृपा भाव से दूसरों को उसका उपदेश करते हैं। तो कहते हैं जो स्वयं का कल्याण चाहते हैं ऐसे लोगों को मोक्षों को उन ऐसे उपदेशदाता को ऐसे गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं से धर्म श्रवण करना चाहिए कि जो जानेंगे ही नहीं रहस्य आध्यात्म का, वो उसका कैसा कथन करेंगे। उपदेशकाचार्य और अध्यात्म रहस्य के उपदेष्टा का लोक में प्रभाव फैले ऐसी आशा करते हैं। 11 नंबर, स्वार्थैकमतयो भान्तु मा भान्तु घट दीपवत, परार्थे स्वार्थमतयो ब्रह्मवत भ्रांत्व हर दिवम। 11 नंबर, जिनकी मति परार्थ में न होकर केवल स्वार्थ में ही रहती है, वे घट में रखे दीपक की तरह लोक में चमके या न चमके, उनमें हमें कोई रुचि नहीं है। किंतु जो स्वार्थ की तरह परार्थ में भी तत्पर रहते हैं, वे ब्रह्म की तरह दिन रात प्रकाशमान रहे। ये उस दिन वो स्वार्थ परार्थ है, वो उसने वो स्वार्थ ने अपना और वो पर के लिए, इस तरह से इतना ही लेना। विशेषार्थ, 3 प्रकार के मुमुक्षु होते हैं, उनमें से कुछ तो अपना उपकार करते हुए भी परोपकार को प्रधान रूप से करते हैं, जैसा कि आगम में कहा है, मुमुक्षु जन अपने दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करना भी उचित नहीं मानते, तथा परदुख से दुखी होकर बिना किसी अपेक्षा के परोपकार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यानी एक कैसे है कि परोपकार में तत्पर, कुछ मुमुक्षु यानी अपने दुख से कोई बात नहीं है, पर दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं। ये दुख दूर करने की वो बात नहीं है, वहाँ वो बात नहीं है। जैसे स्वयं के कोई संकट है, जो कुछ है, तो अपना नहीं, वो दूसरों के, दूसरों का भुला कर रखा है, परोपकार है लौकिक सज्जन का, इस बात की बात है। कुछ मुमुक्षु स्वोपकार को प्रधानता देते हुए परोपकार करते हैं, कहा भी है अपना हित करना चाहिए, यदि शक्य हो तो परहित करना, किंतु आत्महित और परहित में से आत्महित ही सम्यक रूप से करना चाहिए। कुछ अन्य मुमुक्षु केवल स्वोपकार में ही तत्पर रहते हैं, कहा भी है परोपकार को छोड़कर स्वोपकार में तत्पर रहो, लोक के समान दृश्यमान पर पदार्थों का उपकार करने वाला मूड होता है। इन्होंने ये 3 अलग अलग उसमें बताए हैं। आगे ऐसा कहते हैं, इन 3 प्रकार के मुमुक्षों में भी अंतिम में तटस्थ भावना दिखाने के लिए ग्रंथकार ने उक्त कथन किया है। उसका सार यह है कि घट में रखा हुआ दीपक प्रकाशमान हो या न हो, उससे लोगों में न हर्ष होता है न विषाद। घट के अंदर है, उसका प्रकाश तो बाहर नहीं फैल रहा है, वो तो प्रकाशित है या नहीं है, उससे कुछ नहीं लेना देना। वह है और उपादेय पदार्थों का प्रकाशक न होने से उपेक्षा के योग्य माना जाता है, किंतु जो स्वार्थ की तरह ही परार्थ में लीन रहते हैं, वे सदा प्रकाशमान रहे ने उसके इच्छा करते। इसका आशय है कि प्रभावशाली वक्ता के वचनों पर विश्वास करके लोग उसकी वाणी से प्रेरणा लेकर बिना किसी प्रकार की शंका के परलोक संबंधी धार्मिक कृत्यों में प्रवृत्ति करते हैं। अतः परोपकारी पुरुष से बड़ा लोकोपकार होता है, लोगों का उपकार होता है, इसलिए परोपकारी प्रवक्ता सदा अभिनंदनीय है। आगे बढ़ते भी, यद्यपि इन्हें वो लोगों को उपदेश मिलता है, इस अपेक्षा से यहाँ बात करता है, यद्यपि इस काल में निकट भव्य जीव अति दुर्लभ है, तथापि उपदेश करना निष्फल नहीं होता, इसलिए उपदेश के प्रति वक्ता को उत्साहित करते हैं। बारह नंबर पश्यन् संस्कृति नाटकम् स्फुटरस प्राग्वार कीर्मीरितम् स्वस्तश्चर्वति निवृत सुखसुधा मात्यन्तिकी नित्यरम् ये सन्तः प्रतियन्ति तेन्य विरला देशम् तथापि क्वचित् काले कोऽपि हितम् श्रयेदिति सदोत्पाद्यापि शुश्रूषुताम्। उसका अर्थ देखते हैं। सत ने सदा सत उपदेश सदुपदेश होता सदो हो गया ना सतो, कोई बात नहीं हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। कर्म से रहित अपने में अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान मुक्तात्मा व्यक्त स्थायी भावों और रसों के समूह से नाना रूप हुए संसार रूपी नाटक को देखते हुए निर्विकल्प रूप से अनुभव करते हुए अनंत काल तक सुखरूपी अमृत का आस्वादन करते हैं। क्या कहते हैं? यह मुक्त आत्मा की बात है। उसका वर्णन सुनकर तो कहते ऐसा उपदेश सुनकर, यह हम फिर पढ़ेंगे बाद में, जो तत्काल उस पर श्रद्धा कर लेते हैं कि ऐसा ही है, ऐसे निकट भवे जीव इस काल में बहुत विरले हैं। मैंने सिद्ध भगवान का पहले वर्णन किया, क्या किया देखो, कर्म से रहित अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान मुक्तात्मा यानी सिद्धों की बात है नहीं, व्यक्त स्थायी भावों, व्यक्त ने भी पर्याय में प्रकट हुआ है, स्थायी भावों और रसों के समूह से नाना रूप हुए संसार रूपी नाटक को देखते हुए, यानी वो संसारी जीवन के जो अलग अलग पर्याय चल रही है उसका नाटक देखते हुए निर्विकल्प रूप से अनुभव करते हुए, परंतु फिर भी उनमें कोई तो राग द्वेष तो है ही नहीं है, अनंत काल तक सुख रूपी अमृत का आस्वादन करते, अनंत काल तक वो अनंत सुख भोगते रहते हैं, ऐसा उपदेश सुनकर, ऐसा उनका स्वरूप सुनकर कोई उस पर श्रद्धा कर लेते कि ऐसा ही है। तो ऐसा करने वाले जो इसको कहीं निकट भव्य जीव इस काल में बहुत विरले हैं, तथा केवल सरल नहीं, इस पर श्रद्धा नहीं, सिद्धों का वर्णन सुना तो हाँ ऐसा होता है या यही होता है, तो कहते ऐसे सिद्ध भी तो कुछ नहीं होता, बस हम मनुष्य है बस इतना ही वो स्वीकार करते, ऐसे भी है नहीं। तथापि किसी भी समय कोई भी भव्य जीव अपने हित में लग सकता है इस भावना से, क्या कहा, ऐसे भी देखने में आते हैं कि जिसको बिल्कुल कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसी कोई बात बन जाती है कि जीव के कैसे परिणाम हो जाते हैं और पलट जाता है इस मार्ग में, तो कहते उपदेश ऐसा सुनकर किसकी कैसी भी परिणति पलट सकती है, तो क्या कहते हैं, तथापि किसी भी समय कोई भी भव्य जीव अपने हित में लग सकता है इस भावना से श्रवण करने की इच्छा को उत्पन्न करके भी सदा उपदेश करना चाहिए, इसकी बात है वक्ता के लिए बता रहे हैं। विशेषार्थ, यह संसार एक नाटक की तरह है, नाटक दर्शकों के लिए बड़ा आनंददायक होता है, उसमें विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रति आदि स्थायी भावों की पुष्टि होती है, पुष्ट हुए उन्हीं स्थायी भावों को रस कहते हैं, मन के द्वारा जिनका आस्वादन किया जाता है उन्हें रस कहते हैं, ये जो नाटक के रस है ना उसकी बात है। वे श्रृंगार आदि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, जो भय है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, ये अलग अलग उसके होते हैं। उनका सामान्य लक्षण इस प्रकार है, रति आदि के कारण रूप, कार्य रूप और सहकारी रूप जितने भाव है उन्हें लोक में स्थायी भाव कहते हैं। यदि इनका नाटक और काव्य में प्रयोग किया जाए तो उन्हें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहते हैं। उन विभाव आदि के द्वारा व्यक्त होने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं, तथा विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों के द्वारा साधे जाने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं, ऐसा भी अन्यत्र कहा। ये तो ये नाटक के जो शास्त्र होते हैं उनके ये सब भाषा है। यहाँ बतलाया है कि रति आदि की उत्पत्ति के जो कारण है वे विभाव शब्द से, कार्य अनुभाव शब्द से और सहकारी व्यभिचारी भाव नाम से कहे जाते हैं। रति आदि के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन रूप, दूसरे उद्दीपन रूप। स्त्री आदि आलंबन रूप कारण है क्योंकि स्त्री को देखकर पुरुष के मन में प्रीति उत्पन्न होती है। इस प्रीति को उद्बुद्ध करने वाले, बढ़ाने वाले चांदनी, उद्यान आदि सामग्री उद्दीपन विभाव है क्योंकि वे प्रीति को उद्दीप्त करते हैं। इस प्रकार आलंबन और उद्दीपन दोनों मिलकर स्थायी भाव को व्यक्त करते हैं। ये दोनों रस के बाह्य कारण हैं। रसानुभूति का मुख्य कारण स्थायी भाव है। स्थायी भाव मन के भीतर रहने वाला एक संस्कार है जो अनुकूल आलंबन तथा उद्दीपन को पाकर उद्दीप्त होता है। इस स्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही रस शब्द से कही जाती है। इसी से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से व्यक्त होने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं। व्यवहार दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान में रखकर प्रायः आठ प्रकार के स्थायी भाव साहित्य शास्त्र में माने गए हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा और विस्मय। इनके अतिरिक्त निर्वेद को भी नौवा स्थायी भाव माना गया है। इनके अनुसार ही नौ रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। शांत रस की स्थिति के विषय में मतभेद है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में आठ ही रस नाट्य में बतलाए। ये जो नाट्य शास्त्र लिखे गए हैं उनमें ये सारा वर्णन है, उसमें आठ रस बताए भरत मुनि ने। काव्य प्रकाशकार ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। इसके विपरीत उद्भट, आनंदवर्धन तथा अभिनव गुप्त ने स्पष्ट रूप से शांत रस का कथन किया है। ये तो इसका इतना क्यों विस्तार से वर्णन किया पता नहीं। अस्तु, व्यभिचार भाव 33 है। निर्वेद, ग्लानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, क्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सोना, जागना, क्रोध, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, भरण, त्रास और वितर्क। अभी हम यही रुकेंगे। ये जो नाट्य शास्त्र है ना उसके संबंध में ये सब रस वगैरह की चर्चा उन्होंने यहाँ बताई है। वो हमने उसमें कुछ प्रयोजनभूत नहीं है, रस श्रृंगार आदि जो रस होते हैं इतना ही उसमें से हमको लेना है बस। हम कल आगे बढ़ेंगे।
सदा देत होई।